तश्रद्धानामुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया तत्श्रद्धानामुनयो तत्श्रद्धानामुनयो दधाना होना चाहिए ना, तत्श्रद्धानामुनयो। मुझे आप लोगों से श्रद्धाना नहीं सुनाई पड़ रहा है। तत्श्रद्धानामुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया। तो देखिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि किस प्रकार से हम उस तत्व की जिज्ञासा करना चाहिए। तीन गुण बता रहे हैं, या कह सकते हैं चार गुण। एक है कि श्रद्धानः, मतलब श्रद्धावान होना चाहिए, शुष्क तार्किक नहीं होना चाहिए। शुष्क तर्क का अर्थ है जिसका शास्त्र का कोई आधार नहीं। श्रद्धानः मतलब उसको शास्त्र में श्रद्धा है, साधुओं में श्रद्धा है, परंपरा में श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसको भगवान गीता में बताते हैं, श्रद्धावान लभतो ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। क्या था भगवान के अनुसार गीता में क्या गुण है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहला क्या है? श्रद्धा होना चाहिए उसको, तत्पर उसमें लगा रहना चाहिए, और संयतेन्द्रिय उसकी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। यहां पर भी उन गुणों को हम देख रहे हैं। मुनयहा मतलब हो गया मुनिजन, फालतू जन नहीं, जो भोगों में लगा वह नहीं, जो मननशील है। मुनि मननशील, जो मननशील है। हमने आपको पहले भी सुनाया था, समझाया था, वैदिक ज्ञान इज मेंट फॉर एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग को क्या कहेंगे हिंदी में मुझे नहीं पता, लेकिन इसको वृहद अरण्यक उपनिषद में कहा गया है सुनना। आपको वो श्लोक पता है, अगर आपके लिए होमवर्क है वो श्लोक मिल जाए आपको वृहद अरण्यक उपनिषद में। उसमें सुनना होता है, उसमें मनन करना होता है, और नित्य ध्यासनम करना। तो मुझे श्लोक अभी तक मिला, एक जगह मिला था, फिर वो मैं उसका रेफरेंस भूल गया, मैं दिग्गम श्लोक दिख गया था चला गया। तो श्लोक मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। टीचर का काम केवल एक पक्षीय है बोलना, लेकिन स्टूडेंट का काम तीन पक्षीय है, सुनना ध्यान पूर्वक, उसको मनन करना क्या बोला गया है, और फिर अपने जीवन में उसको उतारना, जीवन परिवर्तन, हाँ आत्मसात करना, जीवन परिवर्तन करने के लिए। जैसे हमने पिछली बार सुना कि भाई धन का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आप पूछा जाए धन का उपयोग किस लिए करना चाहिए, हाँ धर्म के लिए करना चाहिए, लेकिन कोई मनन नहीं कर रहे, कोई जीवन में एप्लीकेशन नहीं है, तो फिर हमने वैदिक रूप से सीखा नहीं। वह यह वैसा ज्ञान नहीं है कि हम नंबर लिख दिया और उससे हमारा कोई अपने जीवन में उतारा नहीं, पेपर में लिख के आ गए लेकिन वो पेपर में ही था, उस पेपर को ट्रैश कर दिया गया। ये भी प्रश्न आता है, ये जो आप लोग प्रश्न लिखते हैं बच्चे लोग, उसको क्या किया जाता है? जो आप लोग जांचते हैं कॉपी, उसके बाद क्या करते हैं नंबर देने के बाद, रिपोर्ट कार्ड के बाद? हाँ बस मैं समझता हूँ उसके भी शायद समोसा बनाने के लिए उपयोग होता होगा या जो भी होता हो, लेकिन हाँ रद्दी में भेज देते होंगे। और रिपोर्ट कार्ड की भी उतनी ही वैल्यू है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट और सेकंड की रिपोर्ट कार्ड कौन रखता है, सब उसके समोसे बन रहे होंगे कहीं। तो उसी प्रकार से वैदिक ज्ञान नहीं है, ये हमें आत्मसात करना है। तो उसमें लिखा है ज्ञान वैराग्य युक्त, भोग राग युक्त या नहीं लिखा, या अज्ञान में कोई व्यक्ति है वह तत्व को नहीं समझ सकता है। और यह ज्ञान वैराग्य कैसे आएगा? वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम यद अहेतुकम। भक्ति करने से अपने आप ही ज्ञान वैराग्य क्यों आ जाता है, कोई बता सकता है? क्योंकि भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, तो भगवान इतने अच्छे हैं कि अपने आप ही भौतिक वस्तुओं से हमें रुचि नहीं होती। अब ये लाइन जो दूसरी है वो बड़ी जबरदस्त है, कह रहे हैं पश्यन्ति। पश्यन्ति मतलब एक व्यक्ति नहीं है, बहुवचन में बहुत लोग देखते हैं। पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम, अपनी आत्मा में अपने हृदय में क्षेत्रज्ञ के रूप में भगवान को देखते हैं। देखते हैं मतलब ऐसा नहीं कि ये सिद्धि केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगी, सबको मिलेगी। इस श्लोक को पढ़ाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। जो ये श्रीमद् भागवतम का वैज्ञानिक पद्धति है, ये थ्योरी है, इसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो एक दिन हम भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे, भक्ति प्राप्त करेंगे, और भक्ति प्राप्त करके साक्षात भगवान को देख पाएंगे। ये कोई क्या कह सकते हैं, इट्स नॉट अ जोक हियर, कल्पना नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं। अन्य स्थानों में कोई नहीं बोलेगा कि भगवान का दर्शन होता है, या ऐसा बोल देगा ये छत कौन से गुरु हैं, जय गुरुदेव वाले। मैं ट्रेन में जा रहा था तो बोले आप 15 दिन हमारे उसको फॉलो करो, हम भगवान दिखा देंगे आपको। मैंने कहा दिखाने से पहले बताओ कि वो है कौन। नहीं, नहीं वो हम नहीं बता सकते, वो हम नहीं बता सकते। मैंने कहा ये कैसे मतलब, फिर तो तुम कुछ भी दिखा दोगे, मैं बोल दोगे यही भगवान है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, जब यही समझाया नहीं गया कि भगवान कैसा होता है तो कुछ भी दिखा दिया जाएगा और आप जो है बोल दोगे यही भगवान है। यही हो भी रहा है, ये गुरु जी भगवान है, ये भी भगवान है। भगवान दिखने पे कैसा वर्णन होता है, श्रीमद् भागवत ने पूरा वर्णन है। ध्रुव महाराज के बारे में पता है, माता अदिति ने भगवान को देखा तो मालूम है, और कौन है, नारद मुनि ने भगवान को देखा, सब स्पष्ट वर्णन है। और सब लोग एक ही मार्ग से गए हैं, वो बता रहे हैं हमको क्या होता कैसा लगता है। उसके अलावा क्या नाम है, चित्रकेतु महाराज ने भगवान को देखा, गोपियां भगवान को देख रही हैं, तो किस प्रकार से क्या अनुभव होता है वह तो वर्णन होना चाहिए ना। तभी तो आपको हम कहें कि भाई हम आपको खिला दें, पकौड़ा बोल दें, हम आपको स्वीट राइस खिला रहे हैं और आप खा के बान भी लोगे। जैसे द्रोणाचार्य के बहुत गरीब थे और उनके बेटे का नाम था अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा के लिए दूध नहीं था तो चावल का पानी उनकी माँ पिलाती रहती थी, और सोचते थे मैं दूध पी रहा हूँ। एक बार दूध पी लिए तब कहे अरे ये दूध होता है, कहते हाँ ये दूध होता है, तो आप किसको दूध मानते थे। तो बेचारा फिर वह बहुत रोने लगा, फिर उसको चावल का पानी जो है दूध के रूप में स्वीकार नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है फिर वह वो नौकरी कह सकते हैं, या वो आचार्य के रूप में पद को स्वीकार करते हैं द्रोणाचार्य जी, अपने बच्चे को दुख को नहीं देख पाते, इतने गरीब होते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग को चावल का पानी नहीं पीना है, हमें वाकई अमृत प्राप्त करना है, या चावल का पानी पी के संतुष्ट होना चाहते हैं हम ठीक है कि नहीं, डायबिटीज हो जाएगी उससे। तो इसलिए व्यक्ति को बहुत ध्यान पूर्वक भक्ति करनी है, जब तक भगवान हृदय में दिख ना जाए तब तक जप करते रहना है, उसके बाद छोड़ देना है ना उसके बाद छोड़ देंगे ब्रजेंद्र प्रभु नहीं, उसके बाद छूट ही नहीं सकेगा, यह स्थिति है। और यह बहुत कठिन कार्य नहीं है। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि, आप जिस स्थान पे हैं वहीं पे रहिए, भगवान के बारे में सुनिए। अब तो इतना आसान हो गया है कि टेलीग्राम एक्स इंस्टॉल कर लीजिए तो कथा जो है आपके घर पे आ जाती है, फोन पे आ जाती है, लेकिन प्रभु जी उसका बटन कौन दबाएगा। टेलीग्राम तो इंस्टॉल कर लिया मैंने, लेकिन बटन भी तो कोई दबाए, कोई कान में ईयरफोन तो लगवाए हमारे। अब उसको क्या कहा जाए, माला दे दी जाती है, फ्री में भी दे दी जाती है, कोई मेरे लिए जप तो कर दे, अब इतना तो नहीं किया जा सकता ना, है कि नहीं। बटन तो आपको स्वयं दबाना होगा, जप तो स्वयं करना होगा, बी सी डी तो सीखना ही होगा। समझते हैं बी सी डी मतलब, समझते हैं आप लोग, बिटवीन बर्थ एंड डेथ यू मेक चॉइसेस, जन्म और मृत्यु के बीच में हम चुनाव कर रहे हैं, और वह चुनाव आपको ही करना है। ज्ञान दिया जा सकता है, चुनाव आपने करना है, और इसके द्वारा हमारी अगला डेस्टिनेशन तैयार हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इस श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूत्र को हम यह बोल रहे हैं कि इस वैज्ञानिक पद्धति को आप अगर स्वीकार करते हो, भक्ति करते हो, भागवत सुनते हो, तो साक्षात भगवान को देख पाओगे। कैसे, क्योंकि भक्ति जागृत हो जाएगी। किसके द्वारा, भक्ति, भक्त्या, प्रेमा, भक्ति जागृत हो जाएगी। और वह भक्ति कैसी भक्ति है, बड़ी विशिष्ट भक्ति है, श्रुत ग्रहीत्या, श्रुत अर्थात वैदिक ज्ञान को सुन करके धारण की गई भक्ति, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताए वैकल्पते। कोई शास्त्र को नहीं मान रहा है, शास्त्र नहीं सुन रहा है, और अपने मन गणन तरीके से भक्ति कर रहा है, तो वह केवल समाज में उत्पात ही हो जाएगा। जैसे अरे भाई आपके आराध्य भगवान की 16108 पत्नियां थी, हम भी भगवान के उपासक हैं तो 16 तो हमारी भी हो सकती है। ऐसे लोग तर्क करते हैं, तो यह कोई तरीका नहीं। उनसे बोलो कि क्या अपने आपको 16 रूप में आप विस्तार कर सकते हैं, आप तो केवल एक ही पत्नी के संग रह सकते हैं। और ये भी बात है कि पत्नी पिटाई नहीं करती थी भगवान की, हो सकता है 16 मिलकर के पिटाई करें, वैसे हमने सुना था कि चलिए ठीक है, हम कोई विरोध नहीं करेंगे, सीरियस 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 बात करेंगे। तो खैर बात यह है कि यह भक्ति जीव गोस्वामी कहते हैं विशिष्ट है, क्योंकि श्रुत मन गणन तरह से भक्ति नहीं की जा रही है, शास्त्र के आधार पर भक्ति की जा रही है। इसीलिए भक्ति में शास्त्र को सुनना बहुत जरूरी है। जैसे सीधी सीधी बात है, अगर आप कोई अच्छा वस्तु खाना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या जरूरी है, कुछ भी बनाना है रेसिपी, रेसिपी नहीं होगा तो कैसे मालूम चलेगा स्टोव लाना है कि लकड़ी लानी है ना क्या करना है, कुछ भी नहीं पता ना। और छोटी सी मिस्टेक से गलती हो जाती। उदाहरण के लिए हमारे कल स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़िया सुंदर खिचड़ी बनाई, बहुत टेस्टी था, हम लोग खाने को नहीं मिला, लेकिन लकड़ी के ऊपर बहुत अच्छा प्रसाद बनाया। आज दोपहर सुबह हमारे ब्रह्मचारी ने बनाया, वो टेस्ट नहीं आया। वही वही दाल चावल है, वही डिवोटी किचन का दाल चावल है, वही अग्नि है, वही घी भी है, उतनी मात्रा में घी है, लेकिन वह कुछ उसमें मिस्टेक कर गए तो वह टेस्ट नहीं आया, तो रेसिपी में गड़बड़ हुआ ना। उसी प्रकार से शास्त्र नहीं सुनेंगे, अपने मनगढ़ंत तरीके से करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। मेरे मित्र को मैंने बोला भाई भगवान का नाम लो, तो बोला कृष्णा 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 बोलना चालू किया। हमने कहा नहीं ऐसे नहीं, हरे कृष्णा बोला, नहीं नहीं कृष्णा कृष्णा कोई भी नाम ले लेंगे। हाँ भगवान का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मंत्र बताया गया है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नामनाम कलिकल्मष नाशनम् न तत् परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इससे अलावा सारे वेद छान लो, कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं। तो वेद छानने की जरूरत नहीं है आपको, प्रमाणिक रूप से आपको मालूम चल गया वैसे कर रहे हैं। और अपने मन से कुछ नाम जप करेंगे तो कुछ फायदा होगा, लेकिन उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। यह मंत्र अपने मन से बताया गया है भगवान के नाम, लेकिन यह मंत्र अपने मन से बुलाया गया, तो इस प्रकार से नहीं करना है। शास्त्र के वचन को सुनना है, गंभीरता से सुनना है, विचार करना है, ज्ञान वैराग्य से युक्त होना है, भोगी जीवन नहीं बिताना है, तब भगवान की प्राप्ति हो सकती है। एक बात और समझ लेना चाहिए कि सूर्य को देखना है तो कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तब है जब आंखों की दोनों झिल्ली बोलेंगे दोनों आंखों पे मोतिया बिंद हो तो सूर्य सामने होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार से आप देखो कि अर्जुन कह रहे हैं परब्रह्म परम धाम, भगवान आप ही परब्रह्म हो परम धाम, सबको समझ में आ रहा है। और दुर्योधन के सामने भी भगवान है, वह अपना विराट रूप दिखाते हैं तो कहते हैं ये कोई माया कर रहा है इसको पकड़ो। तो जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वह भगवान सामने भी हो तो समझ में नहीं आता। इस समय बड़ी प्रेरणादायक बात भगवान स्वयं बोलते हैं गोपियों को भी और ब्राह्मण पत्नियों को भी कि मैं सामने हो उससे मुझ में प्रेम नहीं होता है। भगवान अगर सामने भी हो जाए तो उससे प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो तब होगा जब भक्ति के द्वारा हम प्रेम को जागृत करते हैं। वह चार चीजों से होता है, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान के विग्रह की सेवा करने से और भगवान का स्मरण करने से। ये बातें अभी आगे के श्लोकों में भी आने वाली हैं, यानी कि हमको भगवान को देखने की योग्यता प्राप्त करने का साधन प्राप्त है, खुश होना चाहिए। और नहीं तो भगवान भी आकर यहाँ प्रवचन करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान है। जब भगवान इस जगत में थे तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान है, बहुत कम लोगों को। तो इसलिए भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए तब हम समझ पाएंगे, और वह भी श्रवण शास्त्र से होना चाहिए, तब उससे जो भक्ति जागृत होगी तब हम भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है, तो भगवान को समझना या भगवान को देखना कोई ये सामान्य बात नहीं है। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित, ज्ञान अर्थात भगवान का ज्ञान और वैराग्य मतलब जगत के भोगों से विराग अनासक्ति, समन्वित मतलब युक्त होकर गंभीर जिज्ञासु या मुनि। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि भाई आईएएस की तैयारी करने का मतलब क्या हो गया, केवल इतना बोल दिया क्या जाए कि वह आईएएस की तैयारी कर रहा है तो यह बोलने की जरूरत नहीं है कि अब वो 10 घंटे पढ़ रहा है ना। ये तो अंडरस्टूड है कि आधा घंटा पढ़ करके तो जो है वह आईएएस की तैयारी नहीं कर सकता। तो यही बोल रहे हैं मुनि का अर्थ है बहुत गंभीरता से जानना चाहता है। वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति, तो आप कहेंगे प्रभु जी फिर वेदांत क्यों नहीं पढ़ाते, वेदांत का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम की सहज टीका है, तो वही पढ़ने की आवश्यकता है। यह भी आगे क्लियर होगा कि वेदांत लिखने के बाद भी व्यासदेव असंतुष्ट थे, तो उसका सार, उसका जो पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवतम को लिखे तो तृप्त हुए, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति के द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। कैसी अनुभूति करता है? साक्षात भगवान को देखता है। किस रूप में? सच्चिदानंदमय भगवान के रूप में, अचिंत्य गुण स्वरूपम के रूप में। श्रीधरी टीका। ठीक है, हमने उसको चर्चा कर लिया था कि जो मतलब उसका जो पॉइंट शुरुआत में बोला है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वह वेदांत श्रुति को सुनकर के ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर भगवान को देखता है। तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, हम सीधे संस्कृत वाला भाग देखते हैं। दिख रहा है आपको संस्कृत वाला भाग? तंच तत्त्वम सपरिकरया भक्तेव प्राप्यतः इत्याह तच्चेत् अन्वयः। तो कह रहे हैं वो जो तत्व जिसका वर्णन आपने किया था, हमने पिछले वाले श्लोक में किया था, वह भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति करते हैं तो ब्रह्मानुभूति भी होती है, परमात्मा के रूप में अनुभूति भी होती है और भगवान की अनुभूति भी होती है। थोड़ा इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वह है उपनिषद के ज्ञान के द्वारा केवल मात्र ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। परमात्मावादी या योगी जन परमात्मा का अनुभूति कर सकते हैं, तो जो ब्रह्म अनुभूति कर रहा है उसे परमात्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। जो योगी जन है उसको ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी और परमात्मा की होगी, लेकिन भगवान की नहीं होगी। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं, उनको ब्रह्म की अनुभूति भी हो जाती है, परमात्मा की अनुभूति भी हो जाती है और भगवान की अनुभूति भी हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति सूर्य के पास, सूर्य के सूर्यदेव से दोस्ती कर लिया, वहां पहुंच गया, तो वो सूर्य की किरणों को तो देख ही रहा है, सूर्य के गोले को तो देख ही रहा है। जो व्यक्ति पहाड़ के अंदर पहुंच गया तो वह पहाड़ को तो देख ही रहा है, वहां के जीव जंतु को भी देख रहा है, स्पष्ट है। जो ट्रेन में बैठ गया वो ट्रेन की लाइट को भी देख रहा है, ट्रेन के सारे सब कुछ देख रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन जो ट्रेन की लाइट को देख रहा है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ट्रेन में बैठ गया है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? यस। तो कह रहे हैं भक्ति करो, तो भक्ति करके जो भी इच्छा होगी, आप जिस प्रकार का साक्षात्कार चाहते हो वह आपको प्राप्त हो जाएगा। और वो कह रहे हैं परिकरया अर्थात वेदों के अनुसार जो भक्ति की जाती है, पूर्ण रूप से भक्ति की जाती है। किस तरह से भक्ति की जाती है? जैसे कभी भी भगवान की तरफ हमें अपनी पीठ नहीं करनी चाहिए, कभी भी भगवान की तरफ अपने पैर नहीं करने चाहिए। जैसे अभी हम मान लीजिए प्रणाम कर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हम भगवान की तरफ हमारे पैर ना हो जाएं, या फिर किसी भी भक्त को हमें भगवान के सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें हमें कैसे मालूम चलती हैं? शास्त्र से। भगवान को हमेशा अपने बाएं तरफ रख करके प्रणाम करना चाहिए। कैसे मालूम चला? शास्त्र से। भगवान को प्रणाम करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये सब बातें, भगवान का नाम जब कैसे करना चाहिए, सारा कुछ शास्त्र के अनुसार सुनना चाहिए। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, यह शास्त्र विधि सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को त्याग देता है न तो उसे सुख प्राप्त होता है, न शांति प्राप्त होती है, न परागति प्राप्त होती है। तो शास्त्र की विधि के अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए, तब उसको सिद्धि प्राप्त होगी। तो परिकराया अर्थात वह भक्ति जो वेद के अनुसार की जाती है, भागवत के अनुसार कहती है, कर रहे हैं। उसके बाद वह भक्ति कैसी होती है? कहते हैं ज्ञान वैराग्य युक्तेति अत्र ज्ञानम परोक्षम। वह कह रहे हैं यह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होनी चाहिए। और वह ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान मतलब परोक्ष अनुभूति, यानी कि ये एक बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं इसमें, जब ये बात भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ये जो काम है वह हमारी इंद्रियों में, यानी आंख नाक कान इत्यादि में बसा हुआ है, मन में बसा हुआ है और बुद्धि में बसा हुआ है। और जब हम इंद्रियों का व्यापार करते हैं, इंद्रियों से कुछ कार्य करते हैं, तो काम प्रकट हो जाता है। इसलिए इंद्रिय संयम करो। तो श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, अरे भाई यह तो ऐसा हुआ कि जल जो है एक बांध के द्वारा रोक दिया जाए, लेकिन जरा सा भी कुछ छेद होगा बांध का तो जल प्रकट हो जाएगा। तो ये बात सही है कि जो काम है वह केवल इंद्रिय संयम मात्र से है सीमित नहीं हो सकता है। हमें ऐसा अनुभव प्राप्त होना चाहिए जब हम स्वाभाविक रूप से भोग को त्याग दें। आपको बोल दिया जाए कि भाई आपको कुछ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, छूना नहीं है, तो हम कैसे जिएंगे? नहीं नहीं कर सकते ना। लेकिन बोला जाए भगवान को देखो, भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान के बारे में सुनो, भगवान की इत्र जो इत्र भगवान को अर्पित होता है उसको सूंघिए, ये जैसे भगवान की माला भगवान को अर्पित होती उसको धारण करिए, भगवान की ड्रेसिंग कीजिए, तो यह कोई मुश्किल नहीं है। इंद्रियों के वेग को हम भगवान की तरफ जोड़ दे रहे हैं, तो भगवान से जो प्राप्त होने वाला सुख है उसको जब हम प्राप्त करते हैं तो इस जगत के भोगों को स्वाभाविक रूप से हम त्याग देते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? हाँ मैं परोक्ष ज्ञान समझ में आ रहा है, परोक्ष अनुभव, जैसे आप में से बहुत से भक्तों को जब करते हुए अच्छा लगा होगा, तो वो जो अच्छा लगना है वे परोक्ष पर अक्ष मतलब अक्ष से परे इंद्रियातीत अनुभव है। मैं बहुत जल्दी बोल गया शायद बात। परोक्ष मतलब जो अक्ष का मतलब होता है आंखें, तो उपलक्षण से सारी इंद्रियों के परे ये जो अनुभव होगा, जो आप लोगों को जप को अच्छा लगने वाला अनुभव है, वह तो इंद्रियों से परे ही अनुभव हुआ ना, है ना, अलग लगता है ना, कुछ अलग ही है जो आपने ना कभी ना सूंघा ना देखा ना छुआ, उससे बिल्कुल अलग अनुभव होता है। तो वह कौन दे रहा है? भगवान देते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो यही बात बोल रहे, जब इस प्रकार का नाम जप का अनुभव होता है, ये शास्त्र सुनने का अनुभव होता है, कीर्तन में कुछ अच्छा लगता है, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति भौतिक विषयों को त्याग देता है, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं तच्च तंच तत्वात्मनि क्षेत्रज्ञे पश्यन्ति, कह रहे हैं कि उस तत्व को यानी कि भगवान को जीव क्षेत्रज्ञ के रूप में देखता है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र मतलब होता है खेत। तो भगवान गीता में बताते हैं कि सर्व क्षेत्र शुभारत, जितनी भी शरीर है हमारे वह खेत की तरह है, और उसमें दो क्षेत्रज्ञ हैं, कौन है? जीवात्मा और परमात्मा। तो हम केवल अपने खेत के बारे में जानते हैं, भाई आपके शरीर में कोई कष्ट है तो मैं थोड़ा अनुभव कर रहा हूं, मेरे शरीर में कोई कष्ट है वो आप अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन भगवान सभी के क्षेत्रों के सभी के शरीर के बारे में जानते हैं, तो वो देख पाएगा कि किस प्रकार से भगवान उसके हृदय में अवस्थित है। तो यहां बता रहे हैं कैसे देख पाएगा, क्षेत्र के रूप में देख पाएगा, भगवान कैसे मेरे हृदय में अवस्थित है वैसे वो देख पाएगा। किम तत् आत्मानम परमात्मानम, मतलब किसको देखेगा? परमात्मा को देखेगा, स्पष्ट है। उसके बाद कह रहे हैं श्रुतेना वेदांतादि श्रवणेना ग्रहीतया प्राप्तेति भक्तिर द्राढ़च्च मुक्तम, तो कह रहे हैं यह कहकर कि भक्तिया श्रुत ग्रहीतया अर्थात वेदांत आदि के द्वारा श्रवण करके ये भक्ति की जाती है, अर्थात ये भक्ति बड़ी गाढ़ है, कोई कोमल भक्ति नहीं है कि भाई आज कहा किसकी आज क्या कौन सा वार है, आज मंगलवार है तो आज हनुमान जी की पूजा, और बुधवार है तो किसकी होती है? गणेश जी की होती है, और बृहस्पतिवार को किसकी होती है? विष्णु की होती है, चलो विष्णु जी का नंबर आ गया, और मंगल और फ्राइडे को किसकी होती है? संतोषी माता की, जो कि वेद में वर्णन ही नहीं है, ठीक है, और शनिवार को शनि को, यह कोई भक्ति नहीं है, यह कोई भक्ति नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, लौकिक तरीके से चल रहा है। लेकिन हमने वेदांत से सुना, भागवत से सुना, गीता से सुना कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका अंश हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य उनकी ही सेवा करना है, तो अब मेरा चित्त कहीं और नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि हम देवताओं का अनादर करेंगे, लेकिन शास्त्र सुनकर के एकदम फिक्स नहीं, मुझे कृष्ण की ही भक्ति करनी, समझ में आ रहा है। इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर हम प्रामाणिक रूप से नियमित रूप से शास्त्रों को सुनते हैं तो यह दृढ़ता भक्ति में आ ही जाती है। हरि नाम जप करते हैं और शास्त्र नियमित रूप से सुनते हैं, दो प्रमुख चीज, तो भक्ति में प्रगाढ़ता गंभीरता आ ही जाती है, यह भी सीखना हमें चाहिए। और नहीं सुनेंगे तो आज हो जाता है गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम, सुने हैं ना, ये तो सारी लोकोक्ति आपने सुनी होंगी, या फिर आया राम और गया राम, अगर जाते हुए भी राम बोले तो ठीक है, लेकिन बहुत बार जाने के बाद राम मुंह से निकलता नहीं, बल्कि बोलते हैं मर गया मर गया मर गया, बहुत काम है ये है, मरा मरा ही चलता है, लेकिन राम नहीं निकलता है। बहुत बार ऐसा हम देखते हैं, प्राय मैं ब्रह्मचारियों को भी बोलता हूँ इस बात को, भाई देखो यहाँ पे आए हो अपनी इच्छा से और जाओगे भी अपनी इच्छा से, अगर शास्त्र नहीं सुनोगे। समझ में आ रही है आपको बात? कोई ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी उपलक्षण से सभी भक्तों को सोच लीजिए, आप जो कोई भी आए हो अपनी इच्छा से आए हो, जो भक्ति कर रहा है अपनी इच्छा से कर रहा है ना, पैसे दे रहे हैं आपको, पैसे तो नहीं दे रहे। तो भक्ति करने की जो दृढ़ता है जब हम शास्त्र सुनते हैं उसी से आती, नियमित रूप से, नहीं तो मोहित हो जाना, भोग में प्रवृत्त होना, यह तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कितना भी सुन लीजिए ये गेट में पार होते ही याद आ जाएगा अरे हम तो शरीर ही हैं, इसलिए नियमित रूप से सुनना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर हम शास्त्र सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, और यह भी केवल रिकॉर्डिंग से भी पूरा काम नहीं चलता, भक्तों के संग में आकर भी सुनना चाहिए, प्रोसेस तो यही है। खैर अगर नहीं है तो रिकॉर्डिंग से भी काम चला लीजिए। तो अगर परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे दृढ़ हो जाती है, व्यक्ति दृढ़ता से भगवान की भक्ति करता है। तात्पर्य, भगवान वासुदेव, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए बता दूं कि आखिरी श्लोक है, उसके बाद आगे नहीं करूंगा मैं आज। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ये तो स्पष्ट है, भगवान की भक्ति करके ही भगवान का अनुभव होगा, और अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भी थोड़ा भक्ति का समावेश होना चाहिए, तभी ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपने टीका में इसको समझाते हैं, बिना भक्ति को मिलाए थोड़ा सम्मिश्रण किए तो ब्रह्म और परमात्मा की अनुभूति भी नहीं होती। कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो हरे कृष्णा वो भी करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य प्रेम भक्ति नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं इस चैप्टर में, साधना है, सब भूल गए, साधना है भक्ति, साध्य है भक्ति, और परम आराध्य है भगवान कृष्ण, ये इसका विषय है। ये अच्छी बात है कि सब भूल जाते हैं, तो फिर हर बार आप वही बातें बार बार बता सकते हो, हाँ इस बार प्रभु जी ने कुछ नई बात बताई है। हर बार ऐसे चलता है, तो खैर ये बात याद रखिएगा। तो हम यहाँ सीख रहे हैं कि भक्ति, परम भक्ति प्राप्त होती है, प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, तो व्यक्ति भगवान का अनुभव करता है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है, जो बातें स्पष्ट हमने समझा दी उसको हम समझाएंगे नहीं, और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। कोई बता सकता है आंशिक स्वरूप कैसे है, जब तक मैं पानी पी रहा हूँ माइक पे बताइए, भगवान का आंशिक स्वरूप कैसे हैं, वे भी तो विष्णु तत्व हैं, बताइए। यस माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, किसको पता है, किसी को नहीं पता, रवि प्रभु को बता दीजिए, रवि को बताइए, रवि प्रभु को बताइए, दीजिए माइक दीजिए, कम से कम एक बात तो समझ में आनी चाहिए। यस हाँ,
क्योंकि जो परमात्मा के रूप में जो भगवान हृदय में, केवल उपदेक्षा अनुमंतच है, केवल जो आपको चाहिए उसको रिकमेंडेशन करते हैं, यदि तुम्हें ये चाहिए तुम्हारे कर्मफलों के अनुसार तुम्हें ये
रिकमेंड करते हैं कि सैंक्शन करते हैं, रिकमेंड सैंक्शन,
यदि उसके कर्मफलों में वो भोग है तो उसको पूरा ज्ञान नहीं देते हैं।
एक स्पष्ट उदाहरण से आप समझ जाएंगे, मान लीजिए मेरे पिताजी जज हैं, तो जज के रूप में क्या देख रहे हैं, अच्छा इसने वो गड़बड़ किया ठीक है इसको सूली पे चढ़ा दो, अच्छा इसने सही काम किया इसको पैसे दिलवा दो। लेकिन वही जज जब अपने बच्चे के पास आता है घर में, तो क्या तब भी ऐसे बोलता है, तो आज इसने क्या क्या जुर्म किए बोलो भाई, जैसे पत्नी को एड्रेस किया जाता है, जैसे भी किया जाता हो, तो भाई इस बच्चे ने क्या क्या जुर्म किए, इसकी पेशवी कहेंगे, क्या कहते हैं, पेशी बोलते हैं, हाँ पेशी होगी, तो ऐसा करते हैं बच्चे को। मान लीजिए बच्चे ने कोई अपराध भी किया हो, ये अच्छा पॉइंट है, बच्चे ने कोई अपराध किया हो, गलती किया हो, तो भी वही जज पेशगिरी नहीं करता, क्या बोलेंगे उसको, पेशी बोलेंगे, आप कोर्ट में काम करते हैं क्या, नहीं तो खैर पेशगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी पेशगी हुआ बस उसकी क्लास नहीं लगाता कि भाई ऐसे क्यों किया, अरे थोड़ा थप्पड़ मार देगा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है, पुलिस में देगा उसको। तो उसी तरह भगवान का आदान प्रदान भक्तों से अलग होता है, भक्त गलती भी करते हैं तो भगवान थप्पड़ मारते हैं, यमदूत को नहीं भेजते, ठीक है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है, तो स्पष्ट है। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इसको समझाते हैं, कर्मी भौतिकतावादी होते हैं किंतु शेष तीन आध्यात्मवादी होते हैं। कर्मी मतलब वो कर्म कर रहे हैं, वो इसीलिए कर्म कर रहे हैं ताकि उसका जो फल मिलेगा वो है भोगेंगे, चाहे स्वर्ग हो चाहे जगत में कुछ उपलब्धि हो। और ज्ञानी ब्रह्म अनुभूति करना चाहते हैं, ये मैंने समझा दिया था। योगी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, और भक्त भगवान की अनुभूति करना चाहते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया, परम पुरुष अर्थात भगवान कृष्ण। दूसरी श्रेणी में वे अध्यात्मवादी आते हैं, जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है, अर्थात परमात्मा। और तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है, यानी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वपु से निकलने वाले दिव्य तेज का अनुभव कर पाते हैं। जैसा कि भगवत, इसमें मुझे कुछ समझाना है या आप लोग समझते जा रहे हो? ठीक है। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है। कौन सा श्लोक है ये? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वः विशते तदनंतरम। भक्ति के द्वारा व्यक्ति जान सकता है जैसे भगवान हैं, और फिर तत्व में जानकर, वहां भी तत्व शब्द आ रहा है, तत्व में जान करके वह मुझ में प्रवेश करता है, मतलब वह भगवान में समा जाता है। भगवान में समा जाता है, भगवान के धाम में चला जाता है, और एक दृष्टि से समा जाता है, अर्थात वह अब भगवान की सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं करता, वह अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में समा देता है। समझ में आ रहा है? हम लोग भी शून्यवादी हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम, हम कोई और इच्छा नहीं करना चाहते, केवल भगवान की संतुष्ट करने की इच्छा करना चाहते, तो इसलिए हम कभी भगवान में समाने वाले नहीं है। ठीक है, ओके। परम पुरुष का साक्षात्कार भक्ति में सिवान पड़ दिया, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। क्या अर्थ है? पूर्ण ज्ञान अर्थात भगवान का अनुभव, भगवान का ज्ञान, और भौतिक संगति से वैराग्य मतलब क्या? जड़ वस्तु का क्या भोग करना है, भगवान की सेवा करेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान, किसी को पुस्तक चाहिए तो ले सकते हैं, पुस्तक में भी है, ये पुस्तक से पढ़ रहे हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। क्या श्लोक प्रभुपाद बता रहे हैं? वासुदेव भगवती वाला श्लोक। भगवान की भक्ति करते हो तो अपने आप ज्ञान वैराग्य आ जाता है, क्योंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उन परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। ये समझ में आई लाइन? क्योंकि ज्ञान आपको केवल ब्रह्म तक लेके जाएगा और योग आपको परमात्मा तक लेके जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति आपको भगवान के पास लेके जाएगी, इसलिए भगवान की भक्ति ही पूर्ण साधन है। बड़ा स्पष्ट है, मैं इसलिए एक तात्पर्य की एक लाइन को बोल रहा हूं ताकि बातें घुस जाए। बहुत तात्विक पर्पस है और प्रभुपाद जी ने काफी लंबे तात्पर्य लिखे हैं, इस पे पढ़ना बहुत जरूरी है समझने के लिए। भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। तो देखिए प्रभुपाद जी भक्ति के तीन गुणों को बता रहे हैं, ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त और वेदांत श्रुति के श्रवण के द्वारा ग्रहण की गई। ये जीव गोस्वामी जी के कमेंट है, ये सामान्य भक्ति नहीं है। ऐसा कुछ कुछ भी करते रहे कि भाई जैसे हम एक सरदार शहर है राजस्थान में, तो वहां हमारी बस बस लगाई हमने तो देखा भागवत सप्ताह हो रहा है, और जस्ट भागवत सप्ताह के बाहर ही चाय बिक रही है, लोग चाय पी के आकर उसके बाद भागवत सप्ताह सुन रहे हैं। फिर तो थक गए, गला सूख गया, जैसे भी मान लीजिए मैं यहाँ पे चाय का कॉफी रखता भाई, प्रभु जी बीच बीच में क्लास के थोड़ा गला सूखेगा तो चाय पियेंगे, तो अब ये कौन सा वैराग्य हो गया? तो अपवित्र वस्तु है। जैसे हमने कभी एक व्यक्ति की, उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन भजन गाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, तो भाव से तब गा पाते हैं जब थोड़ा सा वो सोम रस पी लेते हैं। तो ये ऐसे तो गा रहे हैं बहुत, ऐसी लागी लगन, आप समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रहे हो, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा तो मगन हो गई लेकिन आपकी मगनता कहाँ पे है? थोड़ा सा पी करके, या उनकी दो चार पत्नियां भी हैं, क्या बोले, वाणी को नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और ऐसे ही एक और तथाकथित संत भी हैं वृंदावन में, उनके बहुत बड़े मंदिर हैं, और उनके एक मंदिर में मैं बरसाना में गया था तो देखा कि एक माता जी के हाथ कंधे पे उनका हाथ है, दूसरी माता जी के कंधे पे हाथ है, और वो खुद सैफरन में है, लाल कपड़े में है। और अद्भुत बात है कि उनके चेले समझ नहीं पा रहे, मैं तो देख के चकित हो गए, क्या कर रहे हैं, एक गोपी के हाथ में दूसरा गोपी और तीसरी गोपी, तो वह खुद ही कृष्ण बन गए ना, और कृष्ण भी सैफरन पहन के गोपियों के संग नहीं करते। अब जो समझने वाले समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो अंधे नहीं होना है हमको, वैराग्य होना चाहिए जीवन में, ज्ञान होना चाहिए, और अद्भुत बात यह है कि अगर भक्त भक्ति कर रहा है और पूर्ण ज्ञान वैराग्य ना भी हो, वह विश्वास के संग भक्ति करता रहे जैसे गुरु ने बताया है, वैष्णव ने बताया है, तो अपने आप ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं, बहुत अधिक वैरागी है तो वह भी ठीक नहीं भक्ति के लिए, क्योंकि उससे हृदय बहुत कठोर हो जाता है। और अगर बहुत भोगी है तब भी मुश्किल है भक्ति में आना, अब उसके लिए अब टीवी का सीरियल छोड़ना ही मुश्किल होगा, क्लास में कैसे बैठेगा। लेकिन जो व्यक्ति बहुत आसक्त नहीं है और बहुत निरासक्त नहीं है उसके लिए भक्ति है। महाराज सिखाए थे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बहुत आसक्त नहीं है और बहुत निरासक्त भी नहीं है। अब उसको बोला जाए भाई तुम खीर खा सकते हो लेकिन भोग लगा खाओ, हाँ ये कर लूंगा मैं। अब भोग कहो एकदम सूखा ही चावल खाना है, ये खाना है, तो ये उसमें उसकी रुचि नहीं। तो क्या योग्यता है? जो बहुत आसक्त नहीं है और जो बहुत निरासक्त भी नहीं है। तो कहेंगे फिर अब वैरागी कैसे उत्पन्न होगा? बहुत अच्छा, तो कह रहे हैं कि जब वो भक्ति करेगा तो भक्ति करने से जो सुख प्राप्त होगा उससे वैराग्य तो हो जाएगा लेकिन हृदय कठोर नहीं होगा। ठीक है, याद है आपको बात? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई। जैसे हम यहाँ भागवत सुन रहे हैं, अब इसके लिए अपने आप को रोक नहीं रहे कि अरे वो सीरियल छूटा जा रहा है भाई। सीरियल सुन पढ़ने की या अखबार पढ़ने की तृष्णा अपने आप समाप्त हो जाती है, लेकिन इसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बार बार भागवत पढ़ते हैं, जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो जब उच्चतर रस प्राप्त हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से हम निम्नतर रस को त्याग देते हैं। लेकिन इसमें हमारा हृदय जो है कठोर नहीं होता। और ऐसे आप जितने वैरागी होते जो कहीं मौनी बाबा हैं, बोल नहीं रहे हैं, ये है, उनके हृदय में बहुत कठोरता आ जाती है, झगड़ालू हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं। नागा बाबा देखिए बहुत कठोर होते हैं, बहुत वैरागी तो होते हैं लेकिन क्रोधी भी बहुत हो जाते हैं। तो भक्त का हृदय जो है वह कोमल होता जाता है। तो क्या तीन गुण सीखे हमने जिस भक्ति के द्वारा हम भगवान को देख पाएंगे? वेदांत से यानी शास्त्रों से सुनना और परंपरा में सुनना, अनंत ग्रंथ लोगों से नहीं सुनना, और ज्ञान वैराग्य से युक्त होना। और यह इसका अर्थ यही कि भक्ति करने से अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य हो जाता है। अतः ऐसा नहीं है कि भक्ति अल्पज्ञ आध्यात्मवादियों के निमित्त होती है। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए भगवान बोलते हैं, क्या श्लोक है भगवद गीता का? स्त्री वैश्य तथा शूद्रस्तेपि यान्ति परांगति माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस् तथा शूद्रस्तेपि यान्ति परांगति। भगवान गीता में कह रहे हैं कि कोई बहुत पापी व्यक्ति हो, स्त्रियां हो, वैश्य हो, द्विजबंधु हो, द्विजबंधु अर्थात ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण कुल में केवल जन्म लिया हो, वह भी यदि मेरा आश्रय लेते हैं तो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, भी, वह भी, अर्थात ये नहीं कहना है कि वे ही, बोल रहे वह भी मतलब वह भी भक्ति कर सकते हैं। अर्थात उसके बाद देखिए, किम पुनः ब्राह्मण भक्ता, किम पुनः ब्राह्मण भक्ता राजर्षयस्तथा। तो फिर राजर्षियों का क्या कहना और भक्तों का क्या कहना, ब्राह्मणों का क्या कहना? कहने का अर्थ यह है कि भक्ति राजर्षि ब्राह्मण भक्त भी करते हैं, और जिनके पास बहुत अधिक तत्व ज्ञान नहीं भी हो वह भी भक्ति करके पार हो जाते हैं। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति जो है वो मूर्ख लोग करते हैं, जो ज्यादा समझ नहीं सकते, ज्यादा ज्ञान नहीं हो सकता वह लोग करते हैं, ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे स्पष्ट रखा है भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, वो सुनते हैं शास्त्र से, ना पढ़ पाए, मान लीजिए सुनते तो है कम से कम, इतना तो समझ में आ गया ना कि कृष्ण भगवान है। आपको उपाध्याय जी सब विश्वास हो रहा है ना? ये बहुत आसान बात नहीं है। आप जाके पूछ लीजिएगा समाज में कौन भगवान है, उसी पे झगड़ा हो जाएगा भगवान कौन कोई, और सब मानते हैं कि किसी को नहीं पता कि भगवान कौन। तो ऐसा नहीं कि भक्त लोग नहीं जानते हैं, शास्त्र सुन करके वह जानते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्तों की भी तीन श्रेणियां होती हैं, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय। आप लोग कौन सी में रहना चाहते हैं? अभी आप पढ़ते जाएंगे, आप लोग देख लीजिए कहां पे। तृतीय श्रेणी के भक्त या नव दीक्षित भक्त जो ज्ञान विहीन होते हैं वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। मतलब उनको भगवान के बारे में कुछ ठीक पता नहीं है, पूजा तो भगवान की करते हैं लेकिन भोगों में बड़ी आसक्ति रहती है। वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। पिछली बार भी हमें कार्यक्रम के लिए बुलाया गया तो बोले प्रभु जी कीर्तन कर लेंगे, प्रवचन वगैरह सुनने में हमारी कोई रुचि नहीं। तो उनका विश्वास है भगवान के ऊपर, तो वह भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति या भगवान के कथा के प्रति ज्ञान, कुछ भगवान के संबंध में जो ज्ञान है उसके प्रति कोई रुचि नहीं। तो वी शुड बी रेस्पेक्टेड, वो भक्त हैं, भगवान पे विश्वास है। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं भक्त? ये कौन से? भौतिक, ये देख लीजिएगा। और ऐसा व्यक्ति नाम का स्वादन भी नहीं कर सकता, नाम जब भी करेगा तो उसको तक स्वाद नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए नाम जब करते समय साथ साथ शास्त्र श्रवण करना बहुत जरूरी है। श्रद्धा शास्त्रीय होनी चाहिए, उस श्रद्धा है लेकिन लौकिक श्रद्धा, इधर से उधर सुन लिया थोड़ा पूजा कर रहा है। जैसे हम आप लोग के वो थे ना, वो पिछले लैंडलॉर्ड, वो लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे लेकिन क्लास सुनने नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से जो है लौकिक भक्त हैं, भक्त भगवान कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं प्रगतिशील नहीं है। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। तो जो निम्न स्तर का भक्त है वह क्यों भक्ति कर रहा है? कुछ उसे भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए। जैसे हमने पढ़ा था ना, जिज्ञासु आर्थ ज्ञानी, ज्ञानी को छोड़ दीजिए, जिज्ञासु आर्थ और अर्थार्थी, ये सब भौतिकता में ही आ जाएंगे। उतना भगवान के बारे में सुने नहीं है, भगवान से कुछ प्राप्त होता है तो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में चार तत्व दिखाई पड़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले वाले को खाली भगवान दिख रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कम से कम भगवान दिख तो रहे हैं, भगवान के विग्रह को तो मानता है, अच्छी बात है। इन चलिए पढ़ते हैं। परमेश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। क्या श्लोक है ये? पालिशेषु दुशस्तच प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति सम्मध्यमा। ईश्वर तद अधीनेशु, ईश्वर तद अधीनेशु बालिशेषु दुशस्तच प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति सम्मध्यमा। वह मध्यम अधिकारी भगवान को देखता है, भगवान की सेवा करता है। पॉइंट नंबर वन। तद अधीनेशु, भक्तों को देखता है जो भगवान के अधीन है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उनसे मैत्री करता है, प्रेम कर रहा है भगवान से, मैत्री कर रहा है भक्तों से। और तीसरा है बालिशेषु, जो इनोसेंट हैं, जो बालिश हैं, जो भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन जानना चाहते हैं, उन पे कृपा करता है। और द्वेषी, जो लोग द्वेषी हैं, जो भक्तों को पसंद नहीं करते, झगड़ा करते हैं, जो भी कर लीजिए, उनकी उपेक्षा करता है, उनका उनके प्रति भी द्वेष नहीं करता है। ध्यान देना होगा, द्वेष नहीं करता है, उपेक्षा करता है। तो ऐसा व्यक्ति मध्यम है, वह ऐसी स्तर पे आकर के हम सच्ची भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, वहां से शुरू कर रहे हैं एक्चुअली सही सही भक्ति। उससे पहले तो हम प्राय भौतिक भक्त हैं। और ये भी देखना होगा कि ऐसा भक्त भगवान से भौतिक वस्तुएं नहीं मानता है, प्रेम करता है भगवान से, भगवान की सेवा इसलिए नहीं कर रहा है उसे कुछ भौतिक वस्तु या भौतिक लाभ प्राप्त हो। तो यह सब कैसे मालूम चला आपको? सुनने के द्वारा। मान लो हम उस स्तर पे नहीं है, मान लो मैं अभी 2 घंटे के बाद फिर से जाके भक्तों से झगड़ा करूं, लेकिन मुझे ये मालूम होना चाहिए कि अभी मैं भौतिक भक्त हूं। एक दिक्कत यह है कि जो नया भक्त है वह ये मानता है कि वह सबसे अच्छा भक्त है, इसीलिए वह दूसरों का सम्मान नहीं करना चाहता। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हम तो भक्ति कर ही रहे हैं, अन्य भक्त भी भगवान को बहुत प्रिय हैं, ठीक है। और अगर हम दूसरों को भक्ति नहीं देना चाहते तो यह भी क्या कहेंगे, वो देगा क्या? उसे समझ में नहीं आ रहा भक्ति क्या है, देगा क्यों? वह नहीं समझ पा रहा है कि भगवान को सबसे प्रिय ये सेवा है कि हम दूसरों को भक्ति करने का मौका दें। और ये भी जो मध्यम अधिकारी वो जानते हैं कि अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो प्रचार होगा भी नहीं। ये बात हमने पहले भी समझाई थी कि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे भगवान के बारे में तो लोगों को नहीं मालूम चलेगा। तो अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान को प्रसन्नता देने के लिए हमें प्रचार करना चाहिए। अब फल देने वाले भगवान है, कितने लोग प्रचारित होंगे, कितना भक्ति करेंगे, वह भगवान के हाथ में है। हमारा कर्तव्य है भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम प्रचार करें। क्या आप लोग माया में हैं? नहीं है? हैं? अरे इतना भी पता नहीं माया में है क्या? माया से मुक्त होना चाहते हैं तो सीधा सीधा फॉर्मूला बता रहे हैं प्रभुपाद जी, भक्त स्वयं भक्ति करे और अन्य लोगों को भक्ति करने का मौका दे तो भगवान की कृपा से वह स्वयं मुक्त हो जाए। मैं कोटेशन भेज दूंगा, खुद वह ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्णेर चरण। तो यह समझना होगा। तो कम से कम मध्यम अधिकार पे तुम आ सकते हैं ना। यहां पे कोई भक्त भक्तों से लड़ाई तो नहीं करते आप लोग, आप इनसे लड़ाई तो नहीं करते, हमारे भक्त भी तो लड़ाई नहीं करते ना आपस में। अच्छा, आप अपने पति से भी तो लड़ाई नहीं करते, वह भी अलाउड, वह भी वैष्णव अपराध बन जाएगा क्योंकि वह भी दो माला जप करते हैं और आप भी लड़ाई नहीं कर सकते। अगर पति पत्नी भक्त हैं और वह भी लड़ रहे हैं तो वह भी वैष्णव अपराध हो जाता है, क्योंकि पत्नी भी भक्त है और पति भी भक्त है। अगर पत्नी भक्त नहीं होती तो काम चल जाता है कि नहीं, लेकिन अगर दोनों भक्त हैं और लड़ाई कर रहे हैं तो फिर वैष्णव अपराध बन रहा है। इसलिए बहुत सम्मान देना चाहिए, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो सम्माननीय है। तो इसलिए भक्तों से झगड़ा नहीं करना। इसमें नहीं लिखा है कि दूसरे लेवल का भक्त जो है वह अच्छे से लड़ाई करता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें कहते हैं नियो फाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। कोई नया भक्त है मतलब झगड़ा ही करता रहेगा प्राय, प्रभु जी उसने मुझे ऐसा बोल दिया, प्रभु जी उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। धीरे धीरे करके जब वह प्रगति करेगा तो उसे भक्तों से प्रेम होगा और काफी समय तक लोग नव दीक्षित रह सकते हैं दीक्षा के बाद भी। समझ गए? नहीं समझ में आया? दीक्षा के बाद भी बहुत समय तक लोग नव दीक्षित ही रह सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? ऐसा नहीं दीक्षा हो गया तो अब सारा ज्ञान दिव्य हृदय में प्रकाशित हो गया। सब सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो भक्तों से झगड़ा करने वाले आपको बहुत सारे लंबे समय तक रहने वाले डिवोटी भी मिल सकते हैं। ज्यादा उसमें प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, हमको बहुत अनुभव है उसके बारे में। अरे तुम समझते नहीं, मैंने सीनियर डिवोटी देखो, तुमने कैसे दिखा दिया उसको बत्ती, पहले किसको दूसरे को कैसे दिखा दी, जानते नहीं मैं सीनियर डिवोटी। अरे बत्ती झूठी हो गई क्या? ये होता है ऐसा, जब श्रवण नहीं करते तो ऐसा ही होता है, जिससे वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सकता है। तो आपने पहली पात्रता क्या सीखी? भगवान का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं कम से कम मध्यम अधिकारी। प्रभुपाद जी बोले हैं इस बात को, भगवत धाम जाना चाहते हो कम से कम मध्यम अधिकारी तो बन जाओ। भक्तों से झगड़ा करोगे तो वहां पर भी जाके झगड़ा चालू कर दोगे शाश्वत रूप से। वैसे ये तो खाली बोलने की बात है, आध्यात्मिक जगत में जाके आप झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन झगड़ा जब कर रहा है भक्तों से तो फिर वह भक्ति में प्रगतिशील नहीं। मान लो हम झगड़ा कर भी रहे हैं तो हमें संकोच सोचना चाहिए, अरे मैं झगड़ा क्यों किया। अगर झगड़ा हो जाए तो कम से कम क्षमा मांग लेना चाहिए, इतना तो कम से कम होना चाहिए। आप लोग रहोगे प्रभु जी तो ऑब्वियस है, भक्ति कर रहे थे सब हो ही जाता होगा, लेकिन इतना ऑब्वियस है नहीं, हमारा अनुभव है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमें भक्ति रसामृत महाराज ने बोला, जो मेरे काउंसलर हैं, हम क्या तपस्या कर सकते हैं जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने तपस्या करी है, केवल एक ही तपस्या हमें करनी है, वो है कि भक्तों को सहन करना। तो ये है, जीवन में काफी कुछ सीखने को मिलता। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग आपके आसपास हैं वे आपके शुद्धिकरण के लिए हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 24 घंटे के अंदर समझ में आने लग जाएगा। अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा कुछ बोल रहा है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तो वो इसीलिए है कि आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे, ताकि ये भावना निकल जाए कि आप कंट्रोलर हैं। ये अनुभव करते हैं, आज 24 घंटे में ऐसा कभी कुछ हुआ कि इसने ऐसा कर दिया जो आपको बिल्कुल अच्छा ना लगा हो पिछले 24 घंटे में? होता ही होता है। और ये इसी कांटे को निकालने के लिए है कि हम कंट्रोलर हैं। आगे पढ़ लेते हैं। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं नया भक्त हूं तो मुझे सुनने में बहुत प्रवृत्त होना चाहिए, जो मुझसे श्रेष्ठ भक्त हैं, जो अधिक शुद्ध हैं या अधिक समय से अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उनका इस जगत को देखने की दृष्टि मुझसे भिन्न है, और सुन करके, इसीलिए प्रभुपाद जी ग्रंथ हमें सुनने चाहिए। वो महाभागवत हैं, महान भक्त हैं, उनसे जब हम बार बार सुनेंगे तो हमारी श्रद्धा परिवर्तित होगी और हम भी मध्यम, कम से कम मध्यम लेवल पे आएंगे। ठीक है, पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है और दूसरा है भागवतम, जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। सच्चा भक्त मतलब कम से कम मध्यम अधिकारी। हाँ, एक बात थोड़ी इसमें कंप्लीट रही हुई भी कि प्रथम श्रेणी का भक्त क्या है। प्रथम श्रेणी का भक्त सबको बस यही देखता है कि सब लोग भक्ति कर रहे हैं, वो बस केवल वो देखता है सब लोग भक्ति कर रहे हैं, केवल मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं। ये है प्रथम वाले से बिल्कुल अलग है, सॉरी तृतीय वाले से बिल्कुल अलग है। तृतीय वाला क्या सोचता है, मैं भक्ति कर रहा हूं बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तुमसे बढ़कर हमारा या हमसे बढ़कर तुम्हारा भक्त कौन, ऐसे कर गाने भी गाते हैं। तो यह है तृतीय श्रेणी का भक्त हुआ। प्रथम श्रेणी का भक्त कहेगा कि मैं तो भक्ताभास हूं, मैं तो भक्त हूं ही नहीं, तो वह एकदम उच्च कोटि के। लेकिन आप देखेंगे मध्यम अधिकारी होना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ी सी विवेक का उपयोग करें, बुद्धि का उपयोग करें, तो भाई भक्तों से प्रेम करना और प्रचार करने का एटलीस्ट प्रयास करना, और जो द्वेषी लोग हैं उनसे दूर रहना, और भगवान से सेवा करने में कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा विवेक का उपयोग करे तो व्यक्ति आराम से मध्यम अधिकारी बन सकता है, कोई डिफिकल्ट नहीं। भाई मान लो, अच्छा और मान लीजिए कोई व्यक्ति नया है और झगड़ालू है, तो हम कम से कम चुप तो रह ही सकते हैं हम लोग। कहां पे अनर्थ निवृत्ति? हाँ इसमें मेरे इसमें क्यों नहीं है? भौतिक संगीत से विरक्त नहीं होते, वो भौतिक आसक्ति में फंसे रहते हैं। यस हाँ, इनका एक बात इंपॉर्टेंट है कि अनर्थ निवृत्ति जब हो जाएगी तब व्यक्ति मध्यम अधिकार पे आएगा, ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं, ऐसा हमने कहीं सुना नहीं कि आप पूरी तरह से आप निष्ठा पे आ जाएंगे तभी भक्तों से मैत्री हो जाएगी। जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतना भक्त और प्रिय लगने लग जाएंगे, क्योंकि मूल बात प्रिय लगने लग जाएगी। ऐसा नहीं है, श्रद्धा के लेवल पे भी अगर व्यक्ति है तो भी वह भक्तों से मैत्री कर सकता है। देखा जाए तो आप ऐसे देखिए ना, श्रद्धा से क्या होता है, साधु संघ, साधु संघ मतलब भक्तों के संग में आके झगड़ा करना, श्रवण कीर्तन करते हैं तो वही साधु संघ हो रहा है, तो वहीं से मैत्री चालू हो रही है। पॉइंट ये एक्चुअली आपने एक अच्छा पॉइंट बोला है, जब व्यक्ति साधु संघ नहीं करना चाहता है तो यह है उसके तृतीय होने का मुख्य लक्षण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह कि नियोफाइट डिवोटी मतलब है जानबूझ के शास्त्र नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि शास्त्र उसको बताएगा तुम्हारी गलतियां क्या है, तुम्हें भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो जानबूझ करके शास्त्र नहीं सुनना चाहता, साधु संघ नहीं करना चाहता। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अनर्थ निवृत्ति के बाद ही व्यक्ति मध्यम के लेवल पे आएगा, ऐसा मैंने कभी स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं, अगर अगर पढ़ूंगा तो उसको मैं कर सकता हूं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? माइक दीजिए। ओ समय बहुत हो रहा है, फिर भी चलिए ठीक है, पूरा तो करेंगे तात्पर्य। माइक नहीं,
हरे कृष्ण। यहाँ पे ईर्ष्यालु जो शब्द आया है वो भगवान से ईर्ष्या करने वालों के लिए है या
भक्त? यस, भगवान से ईर्ष्या करने वाले, भक्तों से ईर्ष्या करने वाले, सभी के। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका कमाता हो। ये तो स्पष्ट है या नहीं स्पष्ट है? पैसा कमाने वालों से भागवत में से पिछली बार भी व्यक्ति आए थे, हम भागवत कराना चाहते हैं, तो प्रभु जी ने बोला यहाँ दो श्लोक दो घंटे में हुए और आप जो है पूरी भागवत 7 दिन में करा लोगे, वो भी तीन दिन घंटे क्लास में, कैसे संभव है? तो खाली एक ड्रामेबाजी करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए, अर्थात परंपरा में ज्ञान देना चाहिए और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। ये भी स्पष्ट है, भगवान की भक्ति करना सिखाना चाहिए, ये नहीं कि जिसकी पूजा करना चाहते उसी की पूजा करो। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती है। यही देखिए मैं बोल ही रहा था, ये स्पष्ट है। सुन क्या सुनने आएंगे, हम तो बस अपना पढ़ ले रहे हैं और सब कर ले रहे हैं, हो रहा है बस, भक्ति हो रही है। ऐसा नव जिज्ञासु भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस बुला बोले रहा नहीं जाता, लेकिन हमें गांव में गए थे, जिस व्यक्ति ने 35 भागवत कथा कराई थी, 35, और हर कथा 3 घंटे की, गुणा 7 21 गुणा 35 कितना हो गया, मेरी मैथ कमजोर है, 300 घंटा, 350 घंटा, 450 घंटा सुन लिया। उसके बाद पूछा मैंने भगवान कौन है, उसके क्लियर नहीं हुआ अभी तक, वो कुछ बोल ही नहीं पाया भगवान कौन है अभी, वो तो भक्ति कर रहे हैं। तो मैं खूब डांट लगाई थी, खूब गाली दिया था उनके घर पे आके, मैंने तो जब करने लगे ऐसे करने लगे, फिर अब उनको समझ में आया 16 माला जब करते हैं तो समझ आ गया भगवान कृष्ण है। मैंने कहा और फिर बोले एक्चुअली मैंने भागवत कथा जो है कथा के लिए नहीं कराया था, गौशाला में डोनेशन कलेक्शन करने के लिए उठाया। तब देख रहे हैं कि उद्देश्य गड़बड़ हो गया तो सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, ये समझना चाहता ही नहीं। उस सुन क्या है, शुणवन अपी ने शुण, क्या कहा जाएगा, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, ऐसी वाली बात, मन कहीं और है, फंसा कहीं और है, वो सुनने की इच्छा ही नहीं, उसको जानने की इच्छा ही नहीं है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है, अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है, अर्थात प्रोफेशनल लोगों से कथा नहीं सुननी। भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यवसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपने जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। तो स्पष्ट है दूध देखने में वही लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव दूध जैसा नहीं होगा, कि दूध अमृत जैसा होता है लेकिन वो विष की तरह कार्य करेगा। लोगों की भोग की बुद्धि कम होनी चाहिए, भागवत सुन के वह भोग की बुद्धि बढ़ जाती है, अपितु प्रवक्ता की भोग की व्यक्ति बढ़ जाती है। करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं केवल कथा करके। क्या था वह, तृण लोभे ना कथा सारम ततो गतः, कारिता कारिता तृण लोभे ना कथा सारम ततो गतः। भागवत के महात्म में लिखा है कि ब्राह्मण तृण लोभ, तृण के मतलब अन्न के लोभ में या धन के लोभ में, किसी भी लोभ से कथा कर रहा है तो कथा का सारा सार गायब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अतएव निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए उपनिषद वेदांत जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। तो स्पष्ट है, बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है, और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। किसी को बोलो भाई जब करते हो, हाँ हाँ सांस सांस में करते हैं, सुना है आपने, से एक माला नहीं करेगा, बोलेगा हम सांस सांस में हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, सांस सांस में राम राम, और बाकी हाथ में क्या कर रहा है, वो केवल पाप कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, हाथ में माला पकड़ के बोल बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलना होगा। इस संबंध में महाराज ने एक बात क्लियर करी थी, कुछ लोग कहते हैं कि मन में करना श्रेष्ठ है, हाँ सत्य है, श्रेष्ठ है, लेकिन मंत्र नाम नहीं। जो भगवान का नाम है उस संबंध में जीव गोस्वामी जी बोलते हैं कीर्तन शब्द कुछ बोल रहे थे, संस्कृत बोले थे कि कीर्तन ही प्रस्थापित बात है, कीर्तन ही करना चाहिए, बोलना ही चाहिए। जो मंत्र से गायत्री मंत्र इत्यादि करते हैं वह मन में करने चाहिए, लेकिन भगवान का नाम जो है वह उच्च स्वर में ही बोलना चाहिए। तो हम लोग सही बोला जाए तो हम लोग संख्या संकीर्तन कर रहे हैं, हम लोग बोल बोल के जो हरे कृष्ण करते हैं, और यही युग धर्म है, इसको ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, तो अब यही देख लीजिए क्या करना है, शास्त्र के आधार पर करना, ये नहीं अपने मनगणन तरीके से मन में हरे कृष्ण कर रहे हैं, नहीं बोल के कर रहा। अतएव जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याज्य समझना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई प्रभुपाद जी गुरु थे, उसके बाद कोई गुरु नहीं रहा, अब प्रभुपाद जी की फोटो रख करके हम दीक्षा ले लेंगे, तो ज्यादा झगड़ा करने की जरूरत नहीं। उनसे पूछो कि श्रुति स्मृति पुराण में कहां लिखा है कि गुरु की फोटो लग करके आप दीक्षा स्वीकार करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं द्रोणाचार्य के संबंध में, क्या एकलव्य ने किया था, तो द्रोणाचार्य बोले तुमने अपना गुरु मुझे मान लिया, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना शिष्य नहीं माना है। तो ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना, कि गुरु ऐसा नहीं हो कि दीक्षा हम फोटो से ले सकते। तो ये एक बहुत बड़ा एक अपसंप्रदाय इस्कॉन के एक भाग चालू हो गया है, जिसको अक्षय पात्र कहते हैं। तो वह यही बोलते रहते हैं कि अरे प्रभुपाद जी के पास कोई गुरु नहीं है, कोई दीक्षा नहीं दे सकता, और अब बस खाली, और अमेजिंग बात है कि यह बोलने वाले गुरु वो स्वयं हो गए और प्रभुपाद जी की फोटो रख करके हम आपको दीक्षा दिलवा देंगे, जिसका शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, और सतर्क रहिएगा ऐसे लोगों से ना मिलिएगा। किसी अनाधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं देनी जानी चाहिए, और अधिकृत करने का आधार क्या है, शास्त्र वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है, यह समाधि कहलाती। तो बहुत सीरियस बात है, अगर भगवान को अपने हृदय में देखना चाहते हैं तो शास्त्र के अनुसार ज्ञान वैराग से युक्त होकर भक्ति करेंगे, तभी देख पाएंगे, नहीं तो भगवान को नहीं देख पाएंगे। कोई प्रश्न है? चलो स्टॉप हियर.